दोस्तों, कार्यक्रम श्रृंखला ईरान के महान बुद्धिजीवी की इस कड़ी में भी हम मशहूर शायर, विद्वान, लेखक व आत्मज्ञानी नूरुद्दीन अब्दुल रहमान जामी के बारे में चर्चा करेंगे। ये कार्यक्रम स्वाति और कमर अब्बास लेकर हाजिर हैं। आशा है पसंद करेंगे। नूरुद्दीन अब्दुल रहमान जामी नवी हिजरी कमरी के मशहूर शायर, लेखक व आत्मज्ञानी हैं। वो 817 हिजरी कमरी बराबर 1414 ईस्वी में खुरासान प्रांत के जाम ज़िले में पैदा हुए। उनके बाप दादा इस्फहान में रहते थे, लेकिन जब तुर्कों की लूट मार शुरू हुई तो वे खुरासान पलायन कर गए और खुरासान के जाम ज़िले के खुरज़र्द इलाके में रहने लगे। जामी के पिता उनके जन्म से कुछ साल पहले परिवार के साथ हेरात चले गए और वहीं बस गए। जामी ने शिक्षा के आरंभिक साल में फारसी साहित्य और अरबी व्याकरण की शिक्षा अपने पिता से हासिल की। उन्होंने हेरात और समरकंद के मदरसों में शिक्षा हासिल की, जो उस समय ज्ञान व साहित्य के अहम केंद्र समझे जाते थे। उन्होंने वहीं गणित, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, अरबी भाषा और धर्मशास्त्र जैसे विषयों में व्यापक ज्ञान अर्जित किया। जामी अपने ज्ञान और आत्मज्ञानी व्यवहार की वजह से तत्कालीन शासकों के निकट बड़ा सम्मान रखते थे। बुढ़ापे से पहले ही विज्ञान, साहित्य व अध्यात्म में उनका डंका उन क्षेत्रों में बजा जहां फारसी भाषा प्रचलित थी। उस्मानी शासन के अधीन इलाकों से लेकर आधे एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत मशहूर और सम्मानीय थे। वो 18 मुहर्रम सन 898 हिजरी कमरी बराबर 1492 ईस्वी में 81 साल की उम्र में इस दुनिया से चल बसे और विशाल खुरासान के हेरात शहर में अपने उस्ताद सादुद्दीन काशगरी के मकबरे के निकट दफन हुए। इस समय जामी की कब्र तख्त मज़ार के नाम से मशहूर है। नूरुद्दीन अब्दुर्रहमान जामी की बची हुई रचनाओं और उनके विचारों की समीक्षा के लिए ज़रूरी है कि हम उनके दौर और उस दौर के सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक हालात पर नज़र डालें।
जामी की दौर की दो आयाम से समीक्षा की जा सकती है, एक साहित्यिक और दूसरे सामाजिक राजनीतिक आयाम। इन दोनों आयाम से जामी के दौर की समीक्षा से शोधकर्ता के सामने इस दौर की अलग तस्वीर उभर कर सामने आती है। एक तस्वीर से प्रशासनिक माहौल का तो दूसरे से सामाजिक वातावरण का पता चलता है। जामी का दौर 9वीं हिजरी कमरी बराबर 15वीं ईस्वी शताब्दी का दौर है, जो मंगोलों द्वारा मचाई गई महातबाही की दो शताब्दी बाद का दौर। यह दौर दर्शाता है कि ईरान दो शताब्दियों के बाद भी मंगोलों द्वारा मचाई गई तबाही के असर से उबर नहीं पाया था।
9वीं शताब्दी और 10वीं शताब्दी के आरंभ को ईरान के इतिहास में तैमूरी शासन काल कहा जाता है। जो चीज़ इस दौर की अहमियत बढ़ाती है वो इस दौर में ईरान में कला व साहित्य के क्षेत्र में अत्यधिक विकास है, जिसके पीछे शासन वर्ग पर ईरान की संस्कृति व सभ्यता का असर था।
कुछ इतिहासकार और शोधकर्ता गलती से इस दौर में ईरान में कला व साहित्य के क्षेत्र में हुई तरक्की का श्रेय तैमूरी शासन को देते हैं, जबकि वास्तविकता इससे अलग है। इतिहास साक्षी है कि तैमूरी शासन में कला व साहित्य के विकास के पीछे जो चीज़ प्रभावी रही है वह समृद्ध इस्लामी ईरानी संस्कृति व सभ्यता का असर था, न कुछ और।
ईरानी संस्कृति खासतौर पर इस्लाम के बाद अपनी प्राचीन समृद्धता के कारण हमेशा आक्रमण करने वाली जातियों को प्रभावित करती रही, यहाँ तक कि उनमें से कुछ इस्लामी ईरानी संस्कृति व सभ्यता के समर्थक व प्रचारक रहे हैं। मंगोल शासक ईरान में अत्यधिक रक्तपात व लूटमार के बाद समय बीतने के साथ ही ईरानी संस्कृति व साहित्य के सेवक बन गए। वे मुसलमान हो गए और उनका दरबार ज्ञान, कला व साहित्य का पालना बन गया। तैमूर के पोतों का दरबार मंगोल शासकों के दरबार की तरह ईरानी अधिकारी चलाते थे, जैसे शासक हुसैन बायकुरा के दरबार के मशहूर मंत्री अली शीर नवाई थे। यही वजह है कि शासक का दरबार शेर शायरी साहित्य व संस्कृति को बढ़ावा देने की दृष्टि से बहुत अहमियत रखता है। तैमूरी शासन के अधिकारी वास्तव में उसके बेटों और वंशजों के शिक्षक थे। यही वजह है कि तैमूर के बेटे और वंशज इस्लामी संस्कृति से अवगत हुए और उनके स्वभाव में ईरानी कला व साहित्य से लगाव देखा जा सकता है। तैमूरी दौर एक शताब्दी से कुछ ज्यादा समय तक चला, जिसे फारसी साहित्य के दो अहम चरणों में एक चरण समझा जाता है। ये दौर अपने बाद वाले दौर अर्थात सफवी दौर के लिए फारसी साहित्य के लिए नए दौर के आरंभ की प्रस्तावना था। ये दौर शायरों, लेखकों और साहित्यिक आंदोलनों की नज़र से ईरानी साहित्य के सबसे अहम दौर में से एक दौर है।
शोधकर्ताओं का मानना है कि तैमूरी दौर प्रशासनिक दृष्टि से हालांकि स्थिर नहीं था, लेकिन कुछ शासकों और कुलीन वर्ग ने इस्लामी ईरानी संस्कृति के प्रभाव में बहुत मूल्यवान सेवाएं की हैं।
तैमूरी शासकों और शहजादों ने ज्ञान साहित्य और कला की जो सेवा की है उसका सभी इतिहासकार लोहा मानते हैं। तैमूर अपने शासन के लिए कुछ ईरानी शासकों की तरह की शान चाहता था। यही वजह है कि कभी वो मजबूर करके तो कभी आपसी सहमति से विभिन्न शहरों के विद्वानों और शायरों को समरकंद बुलाता और वहाँ उन्हें बसाता था। तैमूर के इस काम को उसकी मौत के बाद उसके बेटों और पोतों ने भी जारी रखा। तैमूरी दौर फारसी शायरों व लेखकों की दृष्टि से ईरान के इतिहास के सबसे समृद्ध दौर में से एक है। इन शायरों व लेखकों में वे भी शामिल हैं जिनका जीवन ईरान से बाहर गुजरा है।
उस्ताद सईद नफीसी ने अपनी किताब ईरान में पद्य और गद्य का इतिहास में 9वीं हिजरी में गुजरे 1000 से ज्यादा शायरों का उल्लेख किया। इस तादाद में मशहूर और गैर मशहूर शायर और शायरी में रुचि रखने वाले शहजादे शामिल हैं।
इतिहास के अनुसार इस दौर में शिक्षित वर्ग द्वारा शायरी को पेशा बनाया जाना गर्व की बात थी। इस दौर की शायरी की शैली में विविधता थी क्योंकि शायरों की तादाद बहुत थी और वे समाज के सभी वर्ग से थे। कुछ ऐसे शिक्षित थे जो पुरानी जबान से परिचित थे और पुराने अंदाज में शेर कहते थे, जबकि कुछ शायर समाज के आम वर्ग से निकल कर आए थे। ऐसे शायर अपनी नैसर्गिक प्रतिभा पर अधिक भरोसा करते थे। इस दौर में भी ऐसे शायर थे जो दरबारी थे। ऐसे शायरों को शासकों, मंत्रियों, उनकी बैठकों और युद्ध में जीत के बारे में शेर कहना पड़ता था।
उस्ताद जरीन कूब का मानना है, इस दौर में दरबार में शायरों और कलाकारों की मौजूदगी और सभाओं के आयोजन की वजह से हेरात शहर कला व साहित्य की रौनक का केंद्र समझा जाता। यह शहर अपनी शान के चरम पर और बहुत ही समृद्ध था। इस शहर में शायरों और कलाकारों को तैमूर के बचे हुए खजानों से बहुत मिलता था, जिससे वे बड़ी शान की जिंदगी गुजारते थे।